आज के इस सायंकालीन सत्र में हमारे बीच में आए हैं आदरणीय राजयोगिनी गीता दीदी जी। हम एक हाथ हिलाकर आपका स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं, अभिनंदन करते हैं। जिस अहमदाबाद की धरनी के लिए बाबा कहते हैं ये तो मधुबन का कमरा है, आवाज दो और पहुंच जाते हैं, ऐसी अहमदाबाद की धरनी से पालड़ी में आपने 1967 में ज्ञान प्राप्त किया। और फिर जब आप पहली बार मधुबन में आए तो सात कन्याओं का ग्रुप आया, जिस सात कन्याओं में से आप सबसे छोटी कन्या थी। और बाबा छोटे के लिए क्या कहते हैं, छोटे तो सुभान अल्लाह होते हैं, है ना। और फिर दीदी ने वहां पर दमयंती दीदी के साथ जूनागढ़ में सेवाएं दी, ज्यादातर वहां पे, लेकिन कुछ समय फिर बड़ौड़ा में भी रहे। और फिर 1972 से पोरबंदर में आप निमित्त बनाए गए वहां की सेवाओं के लिए। और तब से लेकर आज दिन तक दीदी वहां पर सेवाओं का विस्तार कर रहे हैं। आपके अंडर में और भी 10 सेंटर हैं। और चूंकि पोरबंदर टूरिस्ट प्लेस भी है तो साल भर टूरिस्ट भी आते हैं, तो अपने बाबा के घर में बाबा के बच्चे भी उस टूरिस्ट प्लेस को देखना चाहते हैं, तो साल भर दीदी के पास रौनक बनी रहती है। जिसको बाबा कहते हैं, जिनके घर में मेहमान होते हैं वो बहुत ही भाग्यशाली होते हैं। तो दीदी के पास तो एक दिन नहीं, दो दिन नहीं, साल के पूरे 365 दिन मेहमान होते हैं। तो बहुत बहुत भाग्यशाली है, बहुत बहुत दुआएं कमाई है दीदी ने। और साथ साथ जो बाबा के अव्यक्त होने के बाद कन्याओं की ट्रेनिंग हुई पहली बार, जिससे टीचर बनते थे, बाबा तैयार करते थे कन्याओं को टीचर के रूप में, तो वो सेकेंड ट्रेनिंग में आप आए। पहली ट्रेनिंग में हमने बताया ना, शीलू बहन आदि निकले हैं, और ये दूसरी ट्रेनिंग से आप निकले हैं, टीचर बने हैं, जिसके लिए बाबा कई बार कहते हैं टीचरों को, ये तो मेरे कौन है, गुरु भाई है ना। और अभी अभी थोड़े दिन पहले ही हम सब ने क्या मनाई थी, गुरु पूर्णिमा, कि जिस दिन हम क्या करते हैं, अपने गुरुओं के प्रति जो उनसे हमने सीखा है उनका सम्मान व्यक्त करने के लिए हम गुरुओं का नमन वंदन करते हैं। तो बहुत भाग्यशाली हैं पोरबंदर वाले जिनको ऐसे गुरु मिले हैं, जिनको स्वयं क्या कहते हैं, भगवान, ये हमारे गुरु भाई हैं। और जिनके जीवन में अंतर्मुखता का गुण एक नेचुरल गुण के रूप में है, तो अंतर्मुखी सदा सुखी, इस पर अगर कोई प्रकाश अच्छी से डाल सकता है तो कौन, जो अपने जीवन में उसको धारण करता है। तो ऐसा सुंदर विषय आज दीदी अपने अनुभव के आधार से बताएंगी कि अंतर्मुखी सदा सुखी कैसे रहता है, आदरणीय दीदी जी। और दीदी जी शुरू करें उससे पहले एक अनाउंसमेंट कि जैसे आपको बताया 7:30 बजे आप सभी को बाबा के घर से याद सौगात मिलेगी, तो याद सौगात के समय आपका बैच जरूर पहना हुआ चाहिए जो भट्टी का मिला है, क्योंकि फिर पहचानना मुश्किल होता है, क्योंकि क्लास में तो क्लास के आकर्षण में जो फ्री है वो भी आ जाते हैं सुनने के लिए, इसलिए पहचान के लिए ये जरूर पहना हुआ हो। और जिसको न भी पहना हुआ हो वो जाएंगे क्लास के बाद और लेकर आएंगे और पहनकर फिर बैठेंगे। तो अभी हम सुनते हैं दीदी जी से।
ओम शांति। आज सुबह सुबह में मुरली क्लास के बाद हम सभी को स्वमान दिया गया था, आप सभी को याद होगा, शांत स्वरूप आत्मा हूँ, साथ साथ डायरेक्शन भी मिला कि आज सभी को क्या करना है, मौन में रहना है। और बाबा भी मुरली में हम सभी को यही सिखलाते और बार बार कहते हैं, साइलेंस की शक्ति, मौन की शक्ति। तो कहा जाता है अंतर्मुखी सदा सुखी, तो अंतर्मुखी माना अंदर ही हुई जो आत्मा है, उस आत्मा का हमें बार बार दर्शन करना है। और बाबा भी कहते हैं कि जितना शांत में रहने से काम कर सकते हैं उतना बोलने से काम नहीं होता है। बाबा ने एक बार मुरली में कहा था कि जितना शांति में डबल काम होता है, चुप रहने से डबल काम और बोलने से काम इतना नहीं होता है, क्योंकि मुख चलता है तो हाथ स्टॉप बंद हो जाता है। इसीलिए बाबा हम बच्चों को बार बार कहते हैं अंतर मुक्ता में रहो, आत्मा का दर्शन। बाबा क्या कहते हैं और सारे दिन में हम देखो क्या करते हैं। इसीलिए बाबा बच्चों को कहते हैं कि क्या करो, मुरली का सुन करके मनन करो, मनन करके अभ्यास करो, और अभ्यास से फिर क्या होती, अनुभूति होती है। तो अंतरात्मा का दर्शन क्या बाबा ने कहा और सारे दिन में हम मनसा वाचा कर्मणा स्वबन संपर्क में क्या कर रहे हैं। बाबा कहते उस प्रमाण प्रैक्टिकल जीवन में स्वरूप में हम लाते हैं या नहीं। मौन रहेंगे तो यह अभ्यास हमारा बढ़ता जाता है। और बाबा कहते अंतर्मुक्ता मना अंडरग्राउंड चले जाओ, अंडरग्राउंड जाने से बाबा कहते कई सारी शक्तियां हमारे जीवन में देखो हम अनुभव में ला सकते हैं, क्योंकि कहा जाता है साइलेंस इज गोल्ड, शांति को अंतर्मुक्ता को सोने के साथ तुलना देखो की गई है। तो बाबा कहते हैं शांति में रहने से कई हमारी शक्तियां देखो अनुभव तो क्या लेकिन बढ़ती जाती है। इसीलिए हम कहते हैं मौन में रहो, आज कहा गया ना, सभी ने क्या अटेंशन रखा, हाँ कि नहीं रहा ही होगा मुझे ऐसे लगता है। तो बाबा कहते हैं बोलने में बहुत शक्ति जाती है, बहुत शक्ति का यूज होता है। इसीलिए कहा जाता है एक घंटा बोलो तो 7 माइल तक हमने चला, 7 माइल वॉकिंग किया, इतना बोलने में शक्ति देखो हमारी खर्च होती है। इसीलिए बाबा कहते हाँ, और बाबा ने टाइटल भी दिया है। कौन से टाइटल दिए हैं? तुम शांति देवता हो, शांति देवी हो, शांति के चुंबक हो, शांति स्थापन करने और तुम बच्चे निमित्त हो, कहते हैं ना बाबा। इतने सारे टाइटल बाबा ने हम बच्चों को दिया है। तो अंतर्मुख सारे दिन में जितना काम हो उतना ही हम बोले। जास्ती बोल 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 करते तो हमारी शक्ति क्या होती? उसमें ही खर्च होती। और क्या बोला, किसको क्या कहा हाँ, यह हमें पता भी नहीं चलता है हाँ। और बोल 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 करते तो सामने वाला सुनने वाला क्या समझता है कि यह कब बंद हो। अभी कईयों को आदत होती है बहुत बातें करने की, बहुत बोलने की। तो बाबा कहते सारे संसार समाचार बाह्यात बातों में हम मन लगाते या बोलते रहते तो क्या होगा बताओ? अंतरात्मा का दर्शन कर सकेंगे? और बहुत बोलने से तो बाबा मुरली में हम बच्चों को बार बार कहता है, सिखाता है कि मुख से कभी देखो कुवचन, दुखदायी शब्द, रफ डफ बोलना ये भी हो जाता, कोई को टॉन्ट मारना होता है कि नहीं। और बाबा कहते बहुत बोलने से क्या होता है, राह देखते हैं कोई ये कब बंद हो। बाबा हम बच्चों को सिखलाते हैं कि आप बच्चे ब्रह्मावत्स हो, तो ब्रह्मावत्स को वाक्य नहीं होना चाहिए लेकिन महावाक्य होना चाहिए। इतना कम बोले जरूरत जहां हो ताकि कोई उत्सुक हो कि यह कब बोले और हम उनकी वाणी सुने, यह कब बोले और हम इनका आवाज सुने। और अनुभव भी कहता है कि जितना अंडरग्राउंड चले जाए उतना हमारी, क्योंकि कहा गया है शांति की शक्ति, साइलेंस शक्ति, शक्ति के साथ देखो तुलना की गई है। तो जितना शांत रहे तो क्या होगा हमारे में, कई सारी शक्तियां देखो बढ़ती जाएंगी। और आजकल तो बाबा कहते हैं बच्चे जहां कहीं भी कोई भी स्थान पर आप रहे हुए हो, चाहे बल घर में हो, सेवा केंद्र पर हो, अपने दुकान पर हो, अपनी ऑफिस में हो, तो आसपास का वायुमंडल बिल्कुल वातावरण शांतमय होना चाहिए ताकि कोई अंदर आए और अनुभव करे कि यहाँ तो इतनी सारी शांति, परम शांति कहाँ से है। हमारे अपने मोहिनी बहन को आपने देखा होगा दादी के साथ साथ हाँ, कईयों ने देखा होगा, कईयों ने ना भी देखा होगा हाँ। तो वो पोरबंदर में आई, कई बार आई दादी के साथ, 4-5 बार दादी पोरबंदर में आए थे, प्रकाशमणि दादी उनके साथ मोहिनी बहन हाँ, होते ही तो कहा, 2-3 बार आई, 2-3 बार कहा कि यहाँ पांव रखने से या रहने से बड़ी शांति का अनुभव होता है। तो बाबा हम बच्चों को सिखलाते हैं जहां कहीं रहते हो वहां आसपास का वायुमंडल कोई भी स्थान पर है तो आसपास का वायुमंडल एकदम शांति का वातावरण हम बना करके रखें। अब शांति का वातावरण कब बना करके रख सकेंगे? जब हम अंदर से शांत होंगे। और वो शांति हमारी गमगीनी वाली शांति नहीं है। कई बार होता है कोई परिस्थिति आई, कोई समस्या आई, कोई बात बन गई, कोई ने कुछ हमें कह दिया चलो, तो क्या होता है, हम चेहरा हमारा शांत लगता है, शांत हो जाता है, परंतु अंदर से क्या होता है, बड़ी हलचल, बड़ी अशांति। ओह, इसने मुझे ऐसे बोल दिया, कह दिया। लेकिन ये अंतर्मुक्ता माना, ये शांति माना, क्या कहेंगे, गमगीनी नहीं। लेकिन हमारी ये शांति खुशी वाली शांति है। शांत में रहने से हमारी अंदर की खुशी, आत्मिक खुशी बढ़ती जाती है। और हमारी प्रकाशमणि दादी ने एक बार कहा था, अंतर्मुक्ता माना क्या, क्या होठ चुप, बोले ही नहीं, कारोबार है तो थोड़ा बहुत बोलना भी पड़ता है, बोलना पड़ता है कि नहीं, कोई को कुछ कहना है तो कैसे, यह कोई इशारों की दुनिया नहीं है, और इशारे समझ भी ना सके कोई, तो थोड़ा बहुत तो कारोबार के लिए बोलना भी पड़ता है। लेकिन बाबा कहते हैं, ऐसे मौन माना यह न समझ ले जैसे दुनिया वाले मौन करते हैं, सारा दिन क्या करते हैं, होठ चुप, बोलते नहीं है, मौन व्रत है। ऐसा हमारा जड़ता पूर्वक का मौन व्रत नहीं है, लेकिन फिर अलबेला भी नहीं बनना है कि भाई हमारा जड़ता पूर्वक का मौन नहीं है तो अलबेले हो जाए, बोल बोल करते हैं, करते रहे। बाबा तो कई बार कहते हैं, जहां हजार शब्द बोलने पड़ते हैं वहां 100 शब्दों में काम पूरा करो, जहां 100 शब्द बोलना पड़ता है वहां मात्र 10 शब्द में काम पूरा करो, और जहां 10 शब्द प्रयोग करना पड़ता है वहां 1 शब्द से काम पूरा हो जाए तो कर दो। तो उन लोगों ने तो जड़ता पूर्वक मौन व्रत रख दिया, लेकिन हमारा मौन कैसा है, जहां कारोबार है वहां बोलना भी पड़ता है, बातचीत करनी पड़ती है। लेकिन बाबा कहते हैं, कौन सी बात कहते, कि मन मुख का मौन सिर्फ नहीं, लेकिन मन का मौन होना चाहिए, मन भी हमारा शांत रहे। जैसे नहीं कहते है, कोई बात बन जाती, हलचल में मन आ जाता, या तो मन एकदम, कईयों का मन ऐसे होता है, छोटी छोटी बातों में, थोड़ी थोड़ी बातों में मन एकदम चलने लग पड़ता है। लेकिन बाबा हमें अभ्यास कराते हैं, कोई भी बात सामने आए, कैसी भी बात आवे, लेकिन हमारा मन चलने लग ना पड़े। प्रकाशमणि दादी कहती थी, सिखाती थी कि देखो, हमारा मन तो छोटी छोटी बातों में चलने लगता है, लेकिन दादी हमेशा अपना अनुभव सुनाती तो कहती थी, मेरे सिर पर यहां बर्फ रखा हुआ है, माना देखो मन एकदम शांत। हमारे पास 2 रहते 5 रहते हैं तो 5 बातें आती, लेकिन दादी तो बहुत बड़ा यज्ञ चलाती तो कई प्रश्न आते होंगे, कई बातें सामने आती होंगी, लेकिन दादी एकदम हलचल में आए, मन उग्र हो जाए, या तो मन चलने लग पड़े, तो ऐसा नहीं, मगज में दादी कहती थी एकदम बर्फ का टुकड़ा रखा हुआ है। तो कहने का भाव है मन शांत रहे और उसमें भी शुद्ध संकल्प, श्रेष्ठ संकल्प, ज्ञान के संकल्प कहेंगे। ये जो है शुभ भावना, शुभ कामना। बाबा हम बच्चों को कहते हैं, आपके सामने कैसी भी आत्मा हो, कड़े संस्कार वाली आत्मा हो या तो ऐसी वैसी तमो प्रधान आत्मा हो, उनको देख करके हमारे मन में और विचार आए। जैसे बाबा कहते हैं विचार चलता है ना कई बार, यह तो सुधरता ही नहीं है। ये कोई ब्राह्मण है लेकिन बाबा कहते हर एक का क्या है, अपना अपना पार्ट है। तो हर एक का अपना अपना पार्ट है तो वही बजेगा कि नहीं, और हम हलचल में आ जाए उनके पार्ट को देखकर तो हमारा मन का मौन अंतर्मुखता रही नहीं, मन चलने लग पड़ा तो शक्तियां भी क्या होती उसके पीछे बहुत सारी खर्च होती रहती है। तो दादी कहती है हमेशा कि मन मुख का मौन साथ में मन का भी मौन, और मन के मौन के लिए सारा दिन कोई आत्मा को हम ना देखें। नहीं तो बाबा कहते हैं आपके दूर देखने के चश्मे बड़े पावरफुल है, और अपने आप को देखने के नजीक के चश्मे, नजीक की नजर एकदम कमजोर है। हमें कोई को देखना ही नहीं है सारा दिन, देखेंगे नहीं तो अंदर में क्या होगा। बाबा कहते जो भी आप ज्ञान रत्न सुनते हो उस ज्ञान रत्नों को अंदर से क्या करो, आप खेलते रहो। यानी जैसा समय, जैसी परिस्थिति, जैसी व्यक्ति, जैसी बात, तो ज्ञान रत्न को एकदम क्या करो, प्रयोग में लाओ, अभ्यास करो, काम में लाओ। बाबा कई बार कहते हैं ज्ञान का मंथन करने से, ज्ञान का ज्ञान रत्न से खेलने से, प्रयोग में लाने से ज्ञान क्या बन जाता है, शक्ति का रूप धारण करता है। ज्ञान एक हमारे लिए शस्त्र बन जाता है, और उस शस्त्र से, उस शक्ति से हम कोई भी परिस्थिति, कोई भी समस्या, कोई भी बात को हम अपने आप फेस कर सकते हैं। हम अपने आप अपना टीचर बन करके उस बात को वहीं क्या कर सकते, खत्म कर सकते। हमें कोई की मदद लेनी नहीं पड़ती कि कोई हमें समझाए, हाँ तब हम समझे नहीं, तो बाबा कहते उनके मार्क्स बढ़ जाएंगे और आपके मार्क्स कम हो जाएंगे। और हम अपने आप देखो ज्ञान रत्नों को प्रयोग में लाने से, यूज करने से हमारे अंदर सच्ची समझ शक्ति के रूप में आ जाती, तो हम कोई भी बात को अपने आप देखो फेस कर सकते, सामना कर सकते। क्योंकि बाबा कहते हैं कि आपकी फील्ड में क्या है, सेवा तो है ही, लेकिन सेवा के साथ क्या है, माया भी है। और कई प्रकार की, कई रूप से माया देखो, कहीं से भी हमारी सामने हजारों रूप लेकर के आती है, कोई भी रूप लेकर के आती है, तो उसका सामना। और सारा दिन आप सभी भी अनुभव करते होंगे कि कोई न कोई रूप में ऊंचाई नीचाई, कोई भी प्रकार की, कोई भी रूप से माया तो देखो आती है, हमारी परीक्षा लेने आती है कितने हमारे गुण बढ़े हैं, कितनी हमारी शक्तियां अंदर से बढ़ी है। इसीलिए वह परीक्षा हो ही नहीं तो आगे नंबर, आगे क्लास हम कैसे ले सकते। इसीलिए बाबा हम बच्चों को कहते हैं कि ज्ञान रत्न को प्रयोग में लाओ, तो शक्ति का रूप, शस्त्र का रूप और माया से सामना करके विजयी बन सकते हो। तो मन का मौन, मुख का मौन, फिर दादी ने कहा कानों का भी मौन। हम पर चिंतन कोई करे और सुनते रहे तो क्या होगा बताओ? हाँ, व्यर्थ हमारे अंदर आता जाता है और व्यर्थ आने से क्या होगा? बाबा से योग लगेगा, मन शांत रहेगा कि वही व्यक्ति सामने आएगा। हाँ, इसीलिए बाबा कहते कान का भी मौन। उसमें भी बाबा ने एक अंडरलाइन कराई थी कि अगर कोई आकर पर चिंतन करता है और हम हा हा करते रहते, फिर क्या हुआ, क्या फिर एक्शन लिया गया कि नहीं? अरे हमें क्या है? हाँ, हम कोई जज है, वकील है, हमें निर्णय करना है? हाँ, कोई की बात ऐसी वैसी देखते भी है जिसे यज्ञ की भी सर्विस हो तो हम ऊपर एक बार सच्ची बात बता दे, बस एक बार। फिर उन्होंने निर्णय क्या लिया, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, वो हमें सोचने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि बाबा हम बच्चों को कहते हैं ऐसे करेंगे हाँ हाँ तो पर चिंतन वाला का तो पाप बनता ही है, लेकिन हमारा हा हा करने से हमारा भी साथ में पाप बढ़ता जाता है। इसीलिए कान का भी मौन और साथ साथ आंखों का भी मौन होना चाहिए। आंखों का मौन मन आंखों को ऑर्डर करे, जो नहीं देखना है वह देखे ही नहीं। आंखें हमारी ऑर्डर मानती है, मन हमारा ऑर्डर मानता है, कान हमारा ऑर्डर मानता है। और पांचवा मौन संग दोष का मौन। हमारे से जो बड़े हैं उन्हों को हम देखते रहे, हमारे से जो आगे है उनको देखते रहे। और बाबा तो वो भी ऊंची बात करते हैं, सी फादर सी मदर, मात पिता को देखते रहो, मात पिता को फॉलो करो कहते हैं ना। हाँ, तो संग दोष भी हमें देखो कैसा संग मिलता है। ऊपर वालों को देखे, नीचे हमारे से जो पीछे है पीछे वालों को देखना ही नहीं है। तो पांच प्रकार का मौन हम जब अंदर से दिल से करेंगे तब देखो क्या होगा, सदा सुख का अनुभव करते रहेंगे। हम यहाँ क्यों आए हैं? ईश्वरीय ज्ञान मार्ग में भला हम क्यों आए हैं? अपने लिए आए हैं, दूसरों के लिए नहीं आए हैं। हाँ, दूसरों का कल्याण जरूर करना है। बाबा भी कहते हैं दूसरों को परिचय दो, सेवा करो। वो भी बाबा ने हमें सेवा एक मनोरंजन के रूप में दिया है, भविष्य भाग्य बनाने के लिए देखो दिया है। बाकी करता कराता कौन है? बाबा ही कराता है, लेकिन मैं कर रही हूं मुझे ही आता है, मैं ही प्लानिंग बुद्धि हूं। दी अभिमान आज कहा न, आत्मस्वरूप आत्मअभिमानी बनने के लिए समझो कोई मासी का घर आज की मुरली में था, कोई मासी का घर नहीं है। आत्मअभिमानी बनना, आत्मस्वरूप में स्थित होना, शांति हमारा स्वधर्म है, शांत स्वरूप आत्मा हूं। तो शांति हमारा स्वधर्म है, स्वदेश भी शांति धाम, और शांति का सागर शिव बाबा। तो जबकि शांत स्वरूप हमारा स्वधर्म भी हमारा शांत स्वरूप शांति देश के हम रहवासी है सभी और शांति सागर बाप की संतान है। वो हमारे में कितनी शांति होनी चाहिए बताओ, कितनी शांति होनी चाहिए। चंद्रमणि दादी जब थे वरदान के रूप में उनके शब्द निकले, मैं जा रही थी क्लास में से मधुबन में ही और वो भी ओम शांति भवन में, यहां जो बना हुआ है ना, तो ओम शांति भवन में जा रही थी और दादी पसार हुए मेरे बाजू में से, तो मेरे सिर पर हाथ रखकर कहा, बहुत छोटी थी मैं, अभी ट्रेनिंग लिया था और बस थोड़े ही समय में एक दो साल के बाद यहाँ आए थे बाबा से मिलने। दादी जी ने क्लास पूरा किया, चंद्रमणि दादी को आपने देखा नहीं होगा कोई ने, हाँ बाबा ब्रह्मा बाबा उनको कहते थे, शेरे पंजाब, बहुत शक्तिशाली थे, बहुत शक्तिशाली। हाँ उन्होंने बहुत सारे अनुभव सुने हैं हम सभी ने। तो मेरे सिर पर हाथ रखकर कहा, अंतर्मुखी सदा सुखी, कुछ अनुभव हुआ होगा हाँ सभा में से। और जब हमारी ट्रेनिंग चली अव्यक्त बाप साकार ब्रह्मा बाप के जाने के बाद, बाबा को बहुत इच्छा थी कुमारियों की ट्रेनिंग चले, लेकिन साकार बाबा के जाने के बाद संकल्प दादी ने पूरा किया, जो 70 में पहली भट्टी चली 2 मास की, कितनी 2 मास की ट्रेनिंग चली। और वह भी कहां पता है, हम जो अभी ठहरे हैं सामने शांति स्तंभ के सामने, ट्रेनिंग सेंटर कहा जाता है, ट्रेनिंग सेंटर, उसमें ऊपर एक कमरा था जिसमें कमरे तो छोटे हैं, 30 कुमारियां बस, कितनी बैठ सकती थी 30 कुमारियां। तो पहली ट्रेनिंग चली 2 मास की, दूसरी ट्रेनिंग चली 1 मास की, और उस 1 मास की ट्रेनिंग में हम सभी थे, छोटे छोटे थे, पढ़ाई पढ़ करके पूरा किया, तो स्कूल कॉलेज की कुमारियां थी और उसमें हमारी ये चंद्रिका बहन, वेदांती बहन, पूर्णिमा बहन थी, सीलू बहन भी साथ में ही थे, आशा बहन थी, हम 30 कुमारियां। और 30 कुमारियां ब्रह्मा कुमारी बन गई। कितने एंड्स मिल गए बाबा को, कितने एंड्स मिल गए, 30 कुमारियां एकदम घर से आई, ट्रेनिंग लिया और बस सभी के सभी सेवा केंद्र पर गए, कोई घर पर देखो गए नहीं। तो उस समय हमारी चंद्रमणि दादी हमारे टीचर थे, कुंज दादी, दादियों को तो आप सभी ने देखा नहीं होगा लेकिन अनुभव तो क्लासेस में सुन ही रहे हैं हम सभी। तो चंद्रमणि दादी थी, प्रकाशमणि दादी, कुंज दादी, ट्रेनिंग नलिनी दीदी थे, ऐसे ऐसे हमारी ट्रेनिंग 1 मास तक चली और सभी कुमारियां, तब देखो ये वरदान मिला हुआ था, अंतर्मुखी सदा सुखी। तो ऐसे आप कहीं कहते हैं आज जैसे मौन रखने के लिए कहा, तो कई बार ऐसे हम भट्टियां करते रहते सेवा केंद्र पर, एक दिन की, 2 दिन की, तो कहा जाता है कि आपको मौन रहना है। तो कोई को बहुत बोलने की आदत होती है ना, बोल 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 करते रहते है, तो कोई कोई क्या कहते, ओहो आज तो हेडेक हो गया, बोलने ही नहीं मिला ना, हेडेक हो गया, सुना है हमने कानों से, हाँ आज तो हम बोर हो गए। लेकिन बाबा कहते हैं हमारी शांति, हमारा मौन, उसमें खुशी समाई हुई है। साइलेंस शक्ति, मौन की शक्ति कहा गया है। तो हम बोर हो जाए, हेडेक हो जाए, हाँ ये तो क्या है, बहुत विपरीत है ना, कि नहीं। तो इसीलिए बाबा हम बच्चों को कहते हैं अंदर से जो शांत रहना जानते हैं ना, मन चलता ही नहीं है जिसका कोई भी बात में। एक बार अव्यक्त मुरली में बाबा ने कहा था, एक भाई ने पूछा, हाँ अमृत वाले योग करता हूं, भोजन शुद्ध खाता हूं, रोज मुरली भी सुनता हूं, रोज मिस नहीं करता हूं, लेकिन फिर भी अंदर से शांति नहीं है। अब अमृत वेले का योग, शुद्ध भोजन और फिर मुरली सुनना, और कहे अंदर का सुख, अंदर की शांति नहीं। तो अव्यक्त मुरली में बाबा ने कहा था, बुद्धि समर्पण नहीं करके चल रहे हैं। रुपया समर्पण करना सहज है, रुपया समर्पण करना सहज है, लेकिन बुद्धि समर्पण करके चलना सहज नहीं है, बहुत डिफिकल्ट है। तो कोई ने पूछा बाबा से कि बाबा बुद्धि समर्पण कर दे, बुद्धि चलाए नहीं तो बुद्धि तो फिर डेड हो जाएंगी, कुछ काम ही नहीं करेंगी। तो बाबा ने कहा ऐसी बात नहीं है, बुद्धि नहीं चलानी है ऐसे नहीं, लेकिन बुद्धि को समर्पित करके हमें चलना है। हमने विचार दिया बड़ों को, विचार दे करके फिर बाबा हम बच्चों के कहते हैं बालक सो मालिक, मालिक सो बालक बन जाओ। यह बैलेंस हमें आना चाहिए बालक और मालिक का। मालिक बनकर विचार दिया, देना भी चाहिए, देते भी है, ऐसे नहीं कि मेरा माना नहीं गया, मेरी बात तो रखी नहीं गई, मेरा तो कोई ने सुना नहीं, अब तो मैं बस चुप, ऐसे नहीं करना है। इसको मौन नहीं कहा जाता है। हाँ मालिक बन करके विचार दिया, आप समझो 10 ने विचार दिया, अब 10 का तो नहीं रखेंगे ना, 10 में से 50 में से जिस बात में फायदा होगा वही बात रखी जाएंगी कि नहीं, ऐसे होगा ना कि नहीं। तो देने समय मालिक बन जाए और सुनने समय, रिजल्ट सुनने समय बालक बन जाए। तो बुद्धि समर्पण करना नहीं आता है, इसीलिए बुद्धि चलती रहती चलती रहती। जहां बुद्धि चलती रहेंगी तो क्या होगा बताओ, हाँ जरूर मौन रह ही नहीं सकेंगे फिर। और मौन रहने में विशेषताएं अपनी नहीं बतानी चाहिए, गुप्त रखनी चाहिए वरदान, लेकिन फिर भी अनुभव यही कहता है 51 वर्ष से ईश्वरीय सेवा में समर्पित हुए हैं, लेकिन सुबह 4 बजे 3:30 बजे से लेकर 8 बजे तक, जब तक मुरली पूरी हो तब तक पोरबंदर सेवा केंद्र पर सुबह सुबह में कोई बोलता ही नहीं है, कभी बोला नहीं है, बोलते भी नहीं है। और बाबा की सीजन में वहां तो रोज 150-200 कभी 300 भाई बहन आते हैं, रुकते हैं, रुकने के बाद रात्रि भोजन, सुबह का नाश्ता, दोपहर का भोजन लेकर जाते हैं। तो 3:30 बजे हमें बनाना पड़ता है, तब वो 7 बजे लेकर अपने आगे आगे स्थान पर जाते हैं। क्योंकि सोमनाथ गांधी बापू का पोरबंदर द्वारका देखने कई भाई बहन आते हैं, जहां यहाँ बाबा की सीजन होती है तो इतनों का खाना बनाना होता है अमृत वाले, तो भी हम लोग बोलते नहीं है कभी नहीं। और बाबा भी कहते हैं आप भी घर में भले रहते हो अभ्यास करो। कौन सा अभ्यास? सुबह 4 बजे से लेकर 8 बजे तक जब तक अमृत वेला और मुरली पूरी ना हो तब तक हमें क्या नहीं करना है? आवाज नहीं करना है, बोलना नहीं है। यह व्रत लेना चाहिए, जड़ता नहीं है व्रत माना, जड़ता नहीं, लेकिन स्वाभाविक स्वभाव हमारा क्या होना चाहिए? एकदम शांत रहना चाहिए। शांत चित होंगे, शांत मन होंगे तो वायुमंडल कैसा रहेगा बताओ? शांति वाला रहेगा कि नहीं रहेगा? ना कोई आएगा तो अनुभव करेंगे कि यहाँ तो बहुत शांति लगी पड़ी है। और आजकल बाबा कहते हमें अंतवाहक शरीर द्वारा सेवा करनी है, चक्कर लगाना है सारे विश्व में। तो लाइट का शरीर हल्का फूल, हाँ भारी भारी नहीं, तो जबकि हमें अंतवाहक लाइट के शरीर द्वारा जबकि सेवा करने का भी समय है। वाणी की सेवा धीरे धीरे क्या हो रहा है? कहाँ जा नहीं रहे हैं, जा नहीं पाते हैं, जा नहीं सकते हैं, है कि नहीं अभी का समय? हाँ, तो अंतवाहक शरीर द्वारा, लाइट के शरीर द्वारा हमें सारे विश्व में भ्रमण करना है, शांति की किरणें पहुंचानी है। दुखी अशांत बेचैन भटकती हुई आत्माओं को सारे सृष्टि के गोले पर बैठकर हमें उन्हें किरणें देनी है, शक्ति देनी है। तो कब दे सकेंगे? जब हम यहाँ देखो व्यक्त में रहते हुए भी, साकार शरीर में रहते हुए, साकार दुनिया में रहते हुए, कामकाज करते हुए, खाना है तो पकाना पड़ेगा, खाना है तो कमाना भी पड़ेगा, लेकिन सब कुछ करते हुए बाबा कहते हैं उपराम, हमारी बुद्धि अब घर तरफ ऊपर लगी रहनी चाहिए, ऊपर रहकर नीचे काम करे। तब बाबा कहते अवतार अवतरित समझ करके काम किया, और अवतार क्या होते हैं? ऊपर चले जाते, चले जाते हैं कि नहीं? तो ऐसे अभ्यास करने से, अंतर्मुखता की धारणा करने से बाबा कहते हैं लाइट बनकर अनेकों की सेवा कर सकेंगे। और बाबा तो कई बार कहते कितने शांत रहो, मुरली में कहते बाबा रावण से भी कोई तीखा तुम्हारे सामने आ जाए, रावण से भी कोई तीखा तुम्हारे सामने आ जाए तो भी तुम्हारी शांति भंग नहीं होनी चाहिए। सिखाता है बाबा, ट्रेनिंग देता है, कोई आकर के क्रोध करता है तुम उसके ऊपर क्या करो? फूल बरसाओ। याद आता है ना मुरली की बात कि नहीं? फूल बरसाओ तो स्थूल फूल की बात नहीं है, बाबा कहते तुम शांत रहो, तुम उस समय बाबा को इतना याद करो जो वो भी थोड़े समय में शांत हो जाए। बाबा कहते तुम दूसरे कमरे में चले जाओ। एक बार कोई ने अनुभव सुनाया था, प्रेम बहन ने, प्रेम बहन को भी देखा नहीं होगा, वो भी तो साकार शरीर छोड़ करके हरिद्वार में रहते थे, कई सारे महामंडलेश्वरों की सेवा की है और बाबा के समय के थे, तो वो सुना रहे थे कि बाबा ने मुझे एक सेवा केंद्र पर भेजा, वहां कोई दो बहनें रहती होंगी, हाँ आपस में संस्कार है ना सभी के, मुझे बहुत अच्छा अनुभव लगा सुनाया तो कहा, दो बहनों का आपस में वार वार लड़ाई झगड़ा होता रहे। अब डी सर्विस बहुत होती है ना आसपास वालों की, आवाज हमारा जाता वो सुनते हैं। हाँ, तो बाबा ने मुझे भेजा, तो मैंने क्या किया, लड़ाई नहीं करो, लड़ो नहीं, ये तो मैंने कहा नहीं उन लोगों को। सेकंड सेकंड में झगड़ा, मिनट मिनट में झगड़ा हो जाए, संस्कार वश, कोई के कड़े संस्कार होते हैं ना। तो मैंने क्या किया, जब उनकी झगड़ा हो लड़ाई हो तब जाकर के मैं बाबा की, उस समय तो बहुत साल पहले की बात है ना, तो उस समय तो बाबा के अपने भवन तो नहीं होते, नहीं थे, किराए पर मकान थे सभी। तो कहा, जहां क्लासरूम छोटा सा था वहां बाबा का फोटो तो रहता है, तो प्रेम बहन कहा मैं वार वार बाबा के सामने जाकर के योग में बैठ जाती थी। 8 दिन ऐसे किया, 8 दिन ऐसे चला, वो झगड़े वो योग में, वो झगड़े वो योग में। 8 दिन के बाद उन दो बहनों ने पूछा कि हम झगड़ते और आप इतनी शांति कहां से रखते, हमें भी नहीं कहते लड़ो नहीं, कहा नहीं आपने, और आपने 8 दिन तक इतनी शांति में रहे, तो हमें भी लगता है कि हम भी रह सकते हैं। तो कर्म करके दिखाया कि कैसे शांत रहना है, और शांति में ही तो क्या है, सुख। शांति ना हो, कई बार नहीं कहते कोई के पास बहुत धन होता है, बहुत धन, लेकिन शांति ना हो तो वह सुख क्या काम का। अगर शांति लगी रहे, शांति बनी रहे, तो धन का क्या होता है, सुख ले सकते हैं। इसीलिए हम सभी को क्या करना चाहिए, समय भी अब बहुत फास्ट तीव्र गति से जा रहा है, समय भी हमें सूचना दे रहा है कि अब समय अचानक कभी भी कुछ हो सकता, बदल सकता है। तो जबकि समय इतना समीप आ गया है, तो हम सभी को क्या करना चाहिए, हाँ, साइलेंस, अंडरग्राउंड, अंतर्मुख, अंतर ध्यान, हमारी अपनी तपस्या के तरफ, प्रकृति के बीच में, प्रकृति रूपी गुफा में, मैं आत्मा तपस्वी मूर्त हूं, रोज यह संकल्प करना चाहिए कि ब्रुकुटी रूपी गुफा में मैं तपस्वी मूर्त आत्मा हूं। अमृत वाले 3:30 बजे उठकर ऐसे संकल्प करे, 4 बजे उठकर, तो सारा दिन हमें वो तपस्या, वो बल तपस्या का वार वार देखो याद रहेगा और याद आएगा कि हमारा काम क्या है, अंडरग्राउंड रहना। बड़े बड़े साइंटिस्ट नई नई इन्वेंशन करते हैं, तो एक एक साल 6-6 मास वो बोलते नहीं है, साइलेंस में, अपनी इन्वेंशन में। तो हमें भी क्या करना है, स्वर्ग की स्थापना, राम राज्य की स्थापना करनी है, तो हमें भी कितना अंडरग्राउंड, कितना साइलेंस रहना पड़े। और साइलेंस, शांति में रहने से, बाबा की याद में रहने से, हमारे में दिनों दिन देखो दिव्यता आती जाती। बाबा मिसाल बताते हैं कि कई बार कोई सन्यासी ऐसे होते हैं जो शरीर छोड़ते तो चारों तरफ सन्नाटा हो जाता है, शांति हो जाती। तो हम तो उससे भी क्या है, बाबा के योगी बच्चे, हाँ, सर्वश्रेष्ठ है। तो क्या होना चाहिए हमारे आसपास, क्या होना चाहिए, कोई आए, कोई हमें देखे तो शांति का दान, सुख का दान देना ना पड़े, वो अपने आप अनुभव करके जाए। कम शब्द में बोलने से भी देखो पहले पहले दादियां गुलाबी भाषा में बोलती थी और आसुरी वृत्तियों की आसुरी वृत्तियां बदल जाती थी। तो हम भी अंडरग्राउंड रहे, अपनी कमाई में रहे, शांत रहे, अंतर्मुखी रहे, इतनी दिव्य शक्तियां बढ़ती जाती है, जो हमें भी अंत में यही काम करना होगा कि आसुरी वृत्ति वाले मनुष्य आए और उनको हम देखो बदल सके। इसीलिए शांत रहे और अतीन्द्रिय सुख का अनुभव देखो करते रहे। अच्छा, ड्रामा प्लान अनुसार साकार ब्रह्मा बाबा को देखने का मिलने का चांस मिला हुआ था हमको। 67 में ज्ञान में चले, बहुत छोटी उम्र थी, 13 साल की, और स्कूल कॉलेज की कुमारी आ रही थी। हमारी अपनी टीचर दमयंती दीदी थे अहमदाबाद के अंदर। 7 दिन का क्लास पूरा किया, आप 13 साल की आयु समझे, समझे कितना समझेंगे हम ज्ञान को। ज्ञान अच्छा लगता था, नया भी लगा। एक बात याद रह गई थी कि शिव बाबा प्यार का सागर है, एक बात अच्छी लगी, याद भी रह गई थी। और 7 दिन के बाद जब ये वेदांती बहन, चंद्रिका बहन हमारे, पूर्णिमा बहन और दूसरी 4-5 कुमारियां थी, 7 आ रही थी दमयंती दीदी लेकर के मधुबन में, तो मुझे भी बोला गया कि तुम चलेंगी। मैंने तो हाँ कहा। 7 दिन के बाद साकार बाबा से मधुबन में यहाँ मिलना हुआ। साकार बाबा का प्रभाव इतना प्रभावशाली था, जो बात मत पूछो, मैं ब्रह्मा बाबा को देख करके ही ईश्वरीय ज्ञान में चल पड़ी। यहाँ आप सभी बहुत पद्मापदम भाग्यशाली हो कि ये बाबा की वरदान भूमि, चरित्र भूमि, कर्म भूमि पर आपको पहली बार देखो भट्टी करने का चांस मिला है। तो साकार बाबा जब थे तो कहेंगे जो बच्चे ज्ञान में निकले वो डायरेक्ट रचना हो गई बाबा की। और उस साकार बाबा को अव्यक्त होने के बाद जो आए वो संकल्प की रचना। तो आप सभी, हम डायरेक्ट रचना हो गए और आप सभी संकल्प की रचना। लेकिन बाबा कहते हैं संकल्प की रचना भी कोई कम नहीं है। सुना, डायरेक्ट रचना तो है ही है, लेकिन संकल्प की रचना भी बहुत शक्तिशाली है। तो साकार बाबा को मिलने का चांस मिला और जब यहाँ आ रहे थे भट्टी में, पांडव भवन की भट्टी में, पांडव भवन में तो बहुत बार आए हैं, बहुत बार अव्यक्त बाप दादा से मिलन मुलाकात भी हुई है। अब हम जब ज्ञान में चले तो बाबा हिस्ट्री हॉल था बस, और कुछ नहीं था। सामने वाले ट्रेनिंग क्लास जो रूम थे वो था, भंडारा टेलीफोन के बाजू में कमरा था उसमें ही भंडारा था। भोजन करते थे तो जो पैसेज है उस पैसेज में ब्रह्मा भोजन करते थे, और बड़ा ब्रह्मा भोजन होता था तो बाबा हिस्ट्री हॉल में। दादियां, जानकी दादी हमारी लाइन में ही बैठकर ब्रह्मा भोजन देखो नीचे बैठकर करते थे। अभी तो कुर्सी आपको मिल गई है, हाँ, लेकिन उस समय नीचे क्लास बैठ करके करते थे। तो जब आए तो बाबा की यहाँ पर आ रहे थे भट्टी में, तो मुझे जहां जहां ब्रह्मा बाबा ने वरदान दिए और जहां जहां मिलन मुलाकात हुई ब्रह्मा बाबा से, वो सारे स्थान 8 दिन पहले घूम रहे थे एकदम। यहाँ बाबा मिले थे ऐसे बोला, यहाँ बाबा मिले थे ऐसे बोला। तो जब हम मधुबन में पहुंचे तो पहले पहले हम नहीं अभी जाते हैं तैयार होकर के बाबा के कमरे में जाते हैं, हाँ फिर भोजन करते। तो उस समय बाबा साकार में जब थे तो झोपड़ी में मिले तो लाइन बन सात कुमारियां खड़ी हो गई, वो सब पुराने थे, हाँ एक एक डेढ़ साल से ज्ञान में चल रहे थे और मैं तो सात दिन के बाद आई तुरंत। तो वो आगे, मैं लास्ट में छोटी, सबको बाबा दृष्टि दे रहे थे, फिर मेरे पर दृष्टि पड़ी बाबा की। तो मुझे सिखाया गया था ट्रेन में तोते की तरह कि साकार में बाबा जब मिलेंगे तो पूछेंगे बच्ची यहाँ क्यों आई हो। मुझे दमयंती दीदी पढ़ा रही थी तो बोलना बाप दादा से मिलने। तो आई दृष्टि सबको मिली, मेरे पर बाबा की दृष्टि पड़ी। बाबा ने तुरंत पूछा क्यों बच्ची यहाँ आई हो। अब सात दिन में क्या पता, पोपट को पढ़ाया गया, वो जवाब दिया फलक से कि बाप दादा से मिलने। बाबा ने दूसरा प्रश्न पूछा, बाप कहाँ है दादा कहाँ है। अब सात दिन के अंदर तो वो उत्तर तो नहीं आएगा, बाप कहाँ दादा कहाँ, कौन दादा कौन बाप। शिव बाबा का मालूम था, दृष्टि दी, मैं दृष्टि लेती रही, मैंने दूसरा जवाब दिया नहीं, आता नहीं था, लेकिन अनुभव हुआ साकर बाबा की दृष्टि से कि जैसे शिव बाबा शांति का सागर है वैसे ब्रह्मा बाबा के नैनों द्वारा ऐसे लगा कि शांति का सागर मेरे पर एकदम उमट रहा है, एकदम शांति का सागर शिव बाबा ब्रह्मा के नैनों द्वारा शांति की दिव्य अनुभूति मैंने किया। अच्छा पूरा हुआ दृष्टि। दूसरे दिन बाबा श्री हॉल में मुरली सुन रही थी, बाबा मुरली सुना रहे थे, मेरे लिए तो नया था मुरली सात दिन के बाद, मैं तो एक टिक से ध्यान से सुनती थी। और बाबा श्री हॉल साकार बाबा के समय आधा भी नहीं भरता था, आधा भी नहीं, इतने ही बाबा की हाँ बच्चे थे। तो दूसरी लाइन में हम बैठे थे ऐसे एकदम नजीक, तो मुरली जैसे पूरी हुई तो बाबा की दृष्टि मेरे पर पड़ी। तो बाबा ने कहा ये बच्ची एक टिक से मुरली सुनती है, बाबा के वरदान के शब्द ऐसे निकले, तब से लेकर आज तक मुझे कोई एक व्यक्ति को भी मुरली सुनानी होगी ना तो अंदर से ऐसे नहीं होगा, एक को क्या सुनाएंगे। जैसे क्लास चलता उसी रस से मैं एक को सुनाती हूँ। अभी तो कई बाबा के सभी घर में कई बच्चे आ रहे हैं सभी सेवा केंद्र पर, लेकिन उस समय बाबा के होते, बाबा के अव्यक्त होने के बाद भी देखो गिने चुने विद्यार्थी आते रहे, एक को भी सुनानी पड़े। और सारे दिन में चार पांच बार सुनानी होंगी तो सुनाऊंगी, और कुछ बोलना मुझे नहीं आता है, कोई से बात करनी हो बहुत लंबी लंबी ओम शांति नहीं आती है, करती भी नहीं हूं, लेकिन पांच बार मुरली सुनानी हो तो बहुत मजा आता है, सुनाऊंगी रसपूर्वक, उसमें ही मजा है। कहने का भाव क्या है कि ज्ञान मुरली में और ज्ञान सुनाने में हमें रस होता है ना, तो व्यर्थ बातें हमारी बुद्धि में कभी आ ही नहीं सकती है, आती ही नहीं है। तो ऐसे बाबा ने कहा एक टिक से मुरली सुनती है। फिर गुरुवार था, गुरुवार के दिन साकार ब्रह्मा बाबा अपने हाथों से सभी बच्चों को भोग देते थे अपने हाथों से, और उस समय प्लेट आदि नहीं थी कागज में, क्योंकि यज्ञ बहुत साधारण रीति से चलता था, तो मैंने भोग लिया। मैं एक साड़ी लेकर के गई थी, सुना, साड़ी लेकर के आई थी आबू में। गुरुवार के दिन मैंने साड़ी पहनी थी, छोटी थी मैं तो भी, सभी पहनते थे तो मैंने भी पहनी, और व्हाइट साड़ी तो घर में रहती होती नहीं है, तो बाजू में से लेकर के आई। नर्स बहन व्हाइट पहनती है ना हॉस्पिटल में, तो उसने नई निकाल करके दिया, तो मैं लेकर के आई, मैंने पहनी, बाबा से भोग स्वीकार किया। भोग लेकर के मैं अपनी जगह पर बैठने गई, थोड़ा चार पांच लाइन के बाद मेरा नंबर था उस दिन, तो वहां मैं भूल गई बैठना, हाथ में भोग और बाबा को मैं वहां खड़ी खड़ी देखती रही देखती रही, और बाबा का ध्यान मेरे सामने गया तो बाबा ने वरदान मुख से बोले कि बच्ची की चलन देवता जैसी है। और फिर लास्ट दिन अनुभव सुनाना होता है, तो मुझे हिंदी बोलना तो आता नहीं था, तो मैंने दीदी दमयंती दीदी को कहा मैं अनुभव नहीं सुनाऊंगी, मुझे हिंदी बोलना नहीं आता है। तो कहते हैं बाबा आने के पहले अनुभव सुनाना होता है, फिर बाबा आते हैं और मुरली सुनाते रात्रि क्लास में। तो हम सभी का नंबर आ गया था साते कुमारियों का सुनाना। दमयंती दीदी लास्ट में सुना रही थी, बाबा आए, आकर के रोज संली पर बैठ जाते और उस दिन यहाँ आकर के खड़े रह गए बाबा हिस्ट्री हॉल में, दरवाजे के पास खड़े रह गए। सभा थोड़ी बड़ी थी तो बाबा देखने लगे सभा को, मेरे पर ध्यान गया, बाबा मुझे ढूंढ रहा था मेरे पर, मैं थोड़ी दूर बैठी थी, मेरे पर नजर गई बाबा की, तो बाबा ने बोला आओ बच्ची, आओ बच्ची, जैसे कहा। और मैं वहां से खड़ी होकर के चल करके नहीं, बड़े बड़े जंप दे करके आ गई। बाबा भी बैठ गए संली पर, मैं भी बैठ गई संली पर, दूसरी संली थी बैठ गई। गुजराती में अनुभव सुनाना शुरू किया, सुनाते सुनाते फिर बाबा ने पूछा, मैंने कहा मैं शंकर की भक्ति करती हूँ, तो बाबा ने पूछा बीच में, बोला बच्ची क्यों शंकर की भक्ति करती हो? मैंने कुछ जवाब नहीं दिया, मैं सुनाने लग गई। फिर बाबा ने पूछा नारायण बनना है या लक्ष्मी? बीच में अनुभव सुनाते हुए बाबा ने पूछा नारायण बनना है या लक्ष्मी? मैंने फलक से जवाब दिया कि बाबा मुझे नारायण बनना है। कुछ समझ नहीं रही थी ज्ञान इतना, लेकिन उत्तर इतना दिया कि मुझे नारायण बनना है। ऐसे करते हुए बाबा ने लास्ट में जब उस समय तो 7 दिन रहना होता था, लेकिन हम 4-5 दिन रहे और फिर यहां से विदाई लिया। तो विदाई लेते हुए बाबा ने शब्द उच्चारण किए कि बच्ची इस संग में रहेंगी तो बहुत अच्छी ब्रह्मा कुमारी बनेंगी। तब से लेकर के अब तक कहेंगे, हमारी बड़ी दीदी थी, आप सभी ने नहीं देखा होगा, कोई कोई ने देखा हो तो भले, मनमोहिनी दीदी, मनमोहिनी भवन में रहते हो ना आप सभी, नीचे शांतिवन में, तो मनमोहिनी दीदी थी, उन्होंने भी एक बार कहा था इन लोगों के संस्कार कभी ऊपर नीचे नहीं हुए हैं। तो बाबा के वरदान भरे शब्द सुनते आज तक भी याद है, और तब से लेकर के कोई से लड़ाई करना, कोई से अणबना होना, कोई से बोलना नहीं, यह हमें अविद्या है, जानते ही नहीं है कि ऐसा करना है। सभी के साथ परिवार मिला है, प्रभु परिवार मिला है, और एक ही बार मिलता है सारे कल्प में, तो अणबनाव, लड़ाई झगड़ा, ईर्ष्या, द्वेष कभी हमें आता ही नहीं है करना, और इस करने में मजा भी नहीं है, आंतरिक सुख हमें अनुभव नहीं होता है। ओम शांति। सॉरी 5 मिनट जास्ती हो गया।
दीदी ने बहुत अच्छा क्लास कराया, हमने भी सुना, बाबा के अनुभव भी जोड़े। तो अंतर्मुखी होने में सदा सुख ही सुख है। तो अभी दो दिन है ना आपके, अंतर्मुखी होके रहना है ना। तो दीदी का एक हाथ हिलाकर धन्यवाद करते हैं, शुक्रिया करते हैं, आभार मानते हैं।